ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பௌத்த கே சார பாக ஹை. वैभाषिक सोत्रांतिक योगाचार माध्यमिक, तो बौद्ध दर्शन के चार को मिलाकर छह दर्शन इसलिए नास्तिक कोटि में आते हैं क्योंकि इन्होंने वेद के प्रामाण्य को स्वीकारा नहीं है. इतना ही है. जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करके चलते हैं, अपनी बुद्धि अपनी अनुभूति अपनी युक्ति बाद में लगाते, वे तो आस्तिक कहलाते. पर जो पहले अपनी बुद्धि दिमाग चलाते हैं और बाद में वेद का समर्थन लेते हैं, उनको नास्तिक सबसे कहा है. तो छह नास्तिक कोटि में है और छह आस्तिक. आस्तिक कोटि में सर्वप्रथम न्याय वैशेषिक दर्शन है, सांख्य योग है और उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, ये बारह दर्शन कहलाते हैं. दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी तो समझने की बात है. दर्शन शब्द का बहुत ही परिभाषा है, दो चार परिभाषा पर विचार करते हैं. दर्शन पर ही बोले तो दो चार घंटे हो जाए, एक ही व्युत्पत्ति लेते हैं. दृश्यते ज्ञायते अनेन दर्शनम, दृश्यते ज्ञायते अनेन इति दर्शन, जिसके द्वारा तत्व का जानकारी हो उसको दर्शन कहते हैं. इस व्युत्पत्ति से इंद्रियादि सिद्ध हुए. अब आप कहेंगे इंद्रियादि को कैसे हम जो है दर्शन कहें, भाई चक्षुरादि से सब दिखाई पड़ता, आंख से रूप देखते, कान से शब्दों को, और व्याप्ति ज्ञान सम्मान का बोध होता है सादृश्य ज्ञान से उपमा का. तो ऐसी व्युत्पत्ति करने से दर्शन शब्द का अर्थ हुआ इंद्रियादि. वेदांत दर्शन में सबका अधिष्ठान ब्रह्मी है, इंद्रियादि भी ब्रह्म से अभिन्न है, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त चैतन्यातिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं. इलाधिष्ठान तेन इंद्रियों का ब्रह्म होने से कोई आपत्ति नहीं. और यह किसी के गले न उतरता हो तो दूसरा विपत्ति किया है, दृश्यते ज्ञायते यद तद दर्शनम, जो देखा जाए जाना जाए जो अनुभव किया जाए वह दर्शन, इसको बोलते भावा विपत्ति. ये कहीं शब्द है विपत्ति वैचित्र्यात् अर्थ वैचित्र्यम. एक ही शब्द की हम जैसी व्युत्पत्ति करते हैं वैसा विलक्षण अर्थ निकल जाया करता है. सत्संग यही आपको लाभ होता है कि आप हर स्थिति को परिस्थिति को आप अच्छे ढंग से व्युत्पत्ति करके ग्रहण करते हैं, हर घटना को अच्छे ढंग से. यही व्युत्पत्ति समझने के लिए एक दृष्टांत में दिया करता हूं कि ऐसे ही सत्संग हो रहा था. सत्संग के बीच में एक बुढ़िया माता आई डंडे टेकती हुई. मां ने कहा पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय, बस सभा बिल्कुल सन्न हो गई. सबने कहा कुछ न कुछ दाल में काला होगा, क्योंकि जैसी जिसकी दृष्टि वैसा ही वह समझता है. प्रवचन भी शुरू हुआ. महात्मा जी ने कहा धन्यवादार कुतरिया, बैठ गए नीचे बूढ़ी मां. सत्संग समापन के बाद साहस करके उसमें एक बड़ी बुजुर्ग प्रबुद्ध जाने माने अधिकारा संपन्न, क्योंकि सब साहस नहीं कर सकते पूछने का, ऐसे अपने आए गिरीश भाई है और जो सीनियर लोग आए, बोले मां जी एक प्रश्न पूछूं. मां ने कहा पूछो बेटा क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जिज्ञासा है, आपने भरी सभा में महात्मा जी को पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय क्यों की? ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं। उस बूढ़ी मां ने इस बात को सुनने के बाद कहा कि अच्छी बात, तू ये बता कुछ व्याकरण न्याय पढ़ा है कि नहीं? ना थोड़ा थोड़ा तो सत्संग सुनता हूं, थोड़ा संस्कार है। उस बूढ़ी मां ने कहा देखो ये पा धातु है रक्षार्थ में, पा रक्षणे और पा पाने, पा रक्षणे से पाती शब्द बनता है और पा जो पाने है उससे पिबती बनता है, दुग्धम पिबती घृतम पिबती। इस महापुरुष ने शास्त्र के ज्ञान को अमृत को पी करके पाती संसार सागर सपना रक्षा कर लिया, इसलिए हमने कहा पापी। पापी शब्द बन जाता है दो धातुओं से, धातु द्वय से। वो व्यक्ति बड़ा चमत्कृत हुआ, बड़ा सुंदर मां ने अर्थ किया। अब वह आदमी गया महात्मा जी के पास, महाराज आपने भरी सभा में इस बूढ़ी मां को कुतरिया क्यों कहा, वो आपको पापी कहा? महात्मा ने कहा देखो भाई, कुतरिया में इतने शब्द उनको तोड़ो, कु मतलब कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चटेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्त चेतः। कुश का एकाक्षर व्याकरण कोश के अनुसार अर्थ हुआ कुलम, और कुल शब्द का भी किनारा भी होता है, नदी के किनारे कुलम बोलते हैं, कुलम पिपीति सती किनारा गिरना चाहता है। जब गंगा जी में बहुत बाढ़ आती है तो बाढ़ से बोलते कुलम पिपीति सती, भाई अब अपनी बचाव कर लो कुटिया का, ये कुल किनारा गिरने वाला है। तो कुल शब्द का अर्थ कुल खानदान वंश भी होता है, कुल का अर्थ किनारा भी होता है। त्रिधातु संप्रवण तारणयु अर्थ में तो संधि कर दो तो कुतरिया बन गया। इस बूढ़ी मां ने अपने कुल को तार दिया, अपने पुत्र पौत्र सबको इसने इतना सुंदर वेदांत का उपदेश दिया कि सभी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। अब आपके मन में शंका होगी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो ये बिजनेस व्यापार मुंबई में रहना कैसे होगा, मन में होता होगा ना, ऐसा नहीं समझना। आत्मज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है, आत्मज्ञान संसार से आपको विमुख नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञानियों में से जनक महाराज का नाम लिया, केवल जनकादय, वो भी सदगृहस्थ थे सम्राट थे, और राजा को दुष्टों को दंडित भी करना पड़ता है, अच्छे को इनाम भी देना पड़ता है। तो आत्मज्ञान से जीवन जीने की कला उपलब्ध होती है, न कि ये जो भगोड़ापन आता है। अर्जुन को भी जब भगवान ने आत्मज्ञान दिया तो अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युत हितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। पहले तो अर्जुन धनुष बाण को छोड़ करके भाग रहा था, पलायनवाद स्वीकार कर रहा था, पलायनवाद कि ये जो है बड़ी भारी हिंसा है, लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, ये अच्छी बात नहीं है, ये मरने के बाद लोगों के पाप लगेगा, लोक में अपयश होगा, और सब हमारे ही जो है गुरु है दादा है मामा था वो सब चचेरे में मेरे लोग हैं, ये तो संग्राम ठीक नहीं। इतना ही धर्म शास्त्र का दुहाई भी दिया कि आगे बड़ शंकर प्रजा हो जाएगी, संस्कार शून्य हो जाएंगे, बहुत सारे परिणामों को दिखाया। युद्ध के जो जो परिणाम हो सकते थे और होते हैं, उन सारे परिणामों को श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान को बता दिया। परंतु भगवान ने जैसे ही उसको उपदेश दिया, गीता का प्रथम उपदेश सूत्र है अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को जुलाब दिया। जुलाब जानते हैं ना, पुराने जमाने में शरीर की शुद्धि के लिए ज्वरादि कोई रोग हो जाए तो जुलाब जमाल घोटा देते थे, उससे केवल रेचन क्रिया होती है, शरीर अंदर से साफ हो जाता। इसके बाद औषधि देते थे, तुरंत असर करता था और जैसे बीमारी दूर होती है। अब आजकल तो सीधा दवाई खाए जाओ, दूसरा तीसरा बीमारी शुरू हो जाता है, ये परंपरा पर्याय थी। तो भगवान ने अर्जुन को वही जमाल घोटा पिलाया, क्या कि प्रज्ञावादाश्च भाषसे, बात तो पंडितों की तरह करता है और इस शरीर को लेके शोक करता है। शरीर तो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलना ही है। बात रही आत्मा की, तो आत्मा तो चैतन्य स्वरूप अजर अमर है। नैनम चिन्नन सहस्त्राणी नैनम धाति पाव का, तो आखिर तू शोक किस लिए कर रहा? भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन के बुद्धिवाद पर प्रहार किया, इसके बाद उपदेश प्रारंभ किया। गीता उपदेश सुनने के बाद आत्मज्ञान जब हुआ तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसने संग्राम किया। संग्राम के बाद बहुत दिनों तक राज्य शासन भी किया। तो आत्मज्ञान से आपका ये जो जमा जमाया संसार है, जिसको आप संजो सजा रहे हैं, वो बिखरता नहीं बल्कि सुधरता है, उसमें निखार आता है। तो आत्मज्ञान हमें जीवन जीने की ये कला सिखाता है। तो जो दूसरी विपत्ति है दर्शन शब्द की, दृश्यते ज्ञायते यद तद दर्शनम, मतलब ब्रह्म। ब्रह्म जो अनुभव का विषय है, जो जाना जाता है, जो जाने योग्य वही ब्रह्म आत्म चैतन्य आत्मज्ञान, वह दर्शन है। तीसरी विपत्ति आप ऐसा भी कर सकते, सप्तमी विपत्ति, दृश्यते यस्मिन तद ब्रह्मा। यस्मिन कार्य जिसमें ये पूरा प्रपंच दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा, जिसमें स्पर्श आदि का ज्ञान हो रहा, जिसमें प्रीति भय आदि हो रहे, वह है ब्रह्मा। परम पूज्य सुनाम धन्य अखंडानंद महाराज की एक जगह लिखा, मिथ्या की परिभाषा बहुत संक्षिप्त सहज भाषा में, स्वाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। हालांकि अद्वैत सिद्धिकार ने 5 परिभाषाएं की, खंडकार ने 11 किया, चिसुखात्मा ने 16 परिभाषा किया कि मिथ्या शब्द क्या है, पर पूज्य स्वामी ने इतना सहज कहा कि स्वाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। बस जो स्व के अधिकरण में जिसकी प्रतीति हो, भासमानता, उसका नाम मिथ्या है। ये जो प्रपंच है ना, इस प्रपंच को भले ही हम समझने समझाने की भाषा में कह देते झूठा, पर झूठा नहीं कहना चाहिए, झूठा है भी नहीं। और संस्कृत के किसी भी वाङ्मय में झूठा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि वो एक जगह इसका कटाक्ष भी किया कि प्रपंच को झूठा मान लिया जाए तो सूक्ति रूप्य और मोदकादि भक्षण में क्या अंतर? सीपी में जो चांदी दिखाई दे रहा है और जो आप थाली सजाकर भोजन करते हैं मोदक आदि, उन दोनों में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं। मिथ्या तो भी है, इसलिए मिथ्या शब्द की परिभाषा है। जो पारमार्थिक सत्ता से भिन्न हो, जो त्रैकाल्य अबाध्य न हो, उसका नाम मिथ्या है। जो व्यवहारिक हो, काम चलाऊ हो, तो थोड़े दिन के लिए जो परिवर्तनशील उसका नाम मिथ्या है। तो स्व मतलब चैतन्य ब्रह्म, उसी अधिकरण में पूरे प्रपंच की प्रतीति हो रही है। तो स्वाधिकरणे भासमानत्वम का मिथ्यार्थ है, तो जिस अधिकरण में ये पूरे प्रपंच का दर्शन हो, ज्ञान हो, विषय का अनुभव, उसको कहते दर्शन मतलब अधिष्ठान चैतन्य। अधिष्ठान चैतन्य में सारा प्रपंच आरोपित है। एक साधारण साधवी एक दिन सपना देखा, सपने में वो देख रहा कि मैं बड़ा भारी राजा बन गया, लोग चारों तरफ हमारी चल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सोने का सिंहासन है, चमर डुला रहे हैं, वाहवाही कर रहे, बड़ा खुश। थोड़े दिन के बाद देखा सपने में कि हमारे दस दस पुत्र हो गए, बड़ा यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गया। सपने बड़ा खुश हुआ, जैसी जगह वैसी वही छोटी सी दुकान में जाके व्यापार। अब उसकी आदत पड़ गई कि हर दिन सपने में जाए देखे। एक दिन संयोग से घर में कुछ डाकू आ गए, डाकुओं ने उस आदमी के पुत्र को मार दिया और सारा धन लूट के ले गए। पत्नी तो छाती पीट कर रोने लगी, हाय मेरा सब कुछ लूट गया, बेटा मारा गया, धन चला गया, अब मैं क्या करूं, उस भगवान को भी दिखाई नहीं दिया और कोई नहीं वही बचा, छाती पीट कर रोने लगी। पर जो पति था बिल्कुल प्रसन्न, कोई चिंता नहीं। पत्नी को बहुत बुरा लगा, उसने कहा तुम्हारा पाषाण बद्र के समान हृदय है, जो जवान बेटा मारा गया, धन चला गया, तो रोता भी नहीं, कैसा आदमी। उसने कहा कि मैं रोऊं तो सही, पर बता किसके लिए रोऊं। कोई किसके लिए, अरे बेटे के लिए रोना चाहिए, धन के लिए रोना चाहिए, सारी दुनिया रोती है। उस आदमी ने कहा कि मैंने परसों सपना देखा, बड़ा भारी राजा हो गया, दस दस पुत्र थे, सिंहासन पर बैठा हुआ था, सब जगते ही लूट गया, तो उन स्वाप्निक पुत्रों के लिए रोऊं सोने के लिए कि ये जो एक बेटा के लिए। उसने कहा वो तो सपना था, उसके लिए क्या रोना है, और कोई रोने की बात है, सपना तो कुछ भी होता है, ये तो जागृत था, जीता जागता था बेटा। उस आदमी ने कहा देवी ये भी एक सपना ही है, वो चार घंटे का सपना था और ये 40 वर्ष के सपने हैं, अंतर इतना ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो उस ब्रह्माधिकरण में सारा प्रपंच की प्रतीति हो रही। आत्म ज्योति हमारे शरीर से जुदा हो जाए तो आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते। जब तक आत्म चेतन हमारे शरीर में है तभी तक हम सारा व्यवहार करते हैं कि हमारे पिताजी हैं, गुरुजी हैं, माताजी हैं, पति पत्नी है। आत्म ज्योति की जुदा होते ही अधिष्ठान चैतन्य के, विशिष्ट चैतन्य के, ये शरीर स्व हो जाता है। इसलिए कहा कि यस्मिन दृश्यते भुज्यते इति तत् ब्रह्म दर्शनम, जिसमें सारा प्रपंच भाषित हो रहा वही दर्शन वही ब्रह्म है। तो दर्शन शब्द का हमने दो चार व्युत्पत्ति किया, वैसे बहुत व्युत्पत्तियां होती है समय की सीमा को देखते हुए। तो जो दर्शन है, अब इस दर्शनों में सर्वप्रथम चारवाक दर्शन के स्थान आता है। तो चारवाक भी दर्शन संज्ञा को जो प्राप्त किया तो उसका भी कुछ रहस्य है। हमारे यहां के चारवाक में और पश्चिम जगत के चारवाक में बड़ा भारी अंतर है, एक नहीं समझना। भाई अपने यहां का चारवाक तो कहता है, कम से कम इतना तो कहता है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। चारवाक शब्द का अर्थ होता है अच्छा जिज्ञासा आपने किया। चारु वाको ये शांति चारवाका, चारु बहुत सुंदर, जो हम लोग गणपति भगवान की स्तोत्र में कहते हैं ना, चारु फल भक्षणम, कपित चारु फल भक्षणम गजाननम के बाद, चारु बोलते सुंदर को, जिसकी बातें सुनने में, सुनने के बाद मनोराज्य करने में बड़ी अच्छी लगे, वे चारवाक कहलाते हैं। तो उनका जो दर्शन है कि ऋणम कृत्वा गृदम पे वेद कहते हैं, चाहे ऋण लेना को पश्चिम से ऋण लेते जाओ, परंतु घृतम पिवेद, घी पी के शरीर को स्वस्थ रखो, ताकि मौका पड़ने पर शत्रुओं को भी देखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर धर्म का अनुष्ठान किया जाए। भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम्, इस शरीर के भस्म होने के बाद न कोई आता है न जाता है, ये तो अपना चारवाक कहता है कि शरीर ये धर्म का साधन है, इसका देह पाथी मोक्ष है, इससे अधिक कुछ भी नहीं, सब शरीर ही है, यही भोग यही मोक्ष, इसको बढ़िया स्वस्थ रखो। पर वो पश्चिम का चारावा कैसा नहीं कहता, वो तो बोलता है ऋणम कृत्वा असुराम पी वेत, अंतर के दोनों बताओ, वो बोले चाहे ऋण करना पड़े पर बोतल जरूर लेना। हाँ, ये तो धर्म के साधन रूप से कहते ना शरीर को, अपने यहां भी कहा कि धर्म का इस शरीर साधन है, क्योंकि तो बिना शरीर के आप न धर्म कर सकते, न अर्थार्जन कर सकते, न मोक्ष की साधना कर सकते। तो चारवाक प्रथम दर्शन है, यह भी इसलिए दर्शन संज्ञा को प्राप्त हुआ, इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। जिस प्रकार से कोई मान लो देहात का किसान हो, अब उस किसान को समझाना है हमें वेदांत परमात्मा भगवान को, अब उसको बोलो जीव ब्रह्म ही बना पर एक ब्रह्म है अधिष्ठान चेतन, सब झूठा मिथ्या, क्या समझेगा वो, तो उल्टा बहक जाएगा, फिसल जाएगा। उसको कहना पड़ेगा भाई प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करके नया कपड़ा पहन लेना, ये शरीर ही भगवान का मंदिर है, और एक लोटा जल भगवान शंकर पर चढ़ा देना, वही परमात्मा है। धीरे धीरे दो चार साल तक जब वह किसान नहा धो करके भगवान शंकर पर जल चढ़ाता है, अपने आप जिज्ञासा होगी कि ब्रह्म तो अजर अमर है, ये पत्थर तो टूट फूट जाता है, ये कैसे ब्रह्म हो सकता। जब जिज्ञासा होगी तो अपने आप वह वेदांत के चिंतन में अग्रसर होगा। तो चारवाक दर्शन का पूर्व पीठिका है, अपने यहां भी वेदांत की पूर्व में जहां पर अधिकारी का विवेचन है वहां पर क्या कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय वान अधिकारी, चार अनुबंध है, अनुबंध सबको पता ही है। तो साधन चतुष्टय अधिकारी है, साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय का अर्थ है विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षा। तो षट संपत्ति तभी होगी जब आपका शरीर इंद्रियां स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ विचार होते हैं। अब शरीर रुग्ण है असमर्थ है तो आप अच्छी तरह से वेदांत का विचार नहीं कर सकते, उसके शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए अपने यहां वैदिक काली व्यवस्था थी कि शैशव्य व्यस्त विद्या नाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम योगे नंदी तनु तेजताम। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में वैदिक व्यवस्था का जिक्र किया, शैशव अवस्था में 1 से 25 वर्ष तक वेदाध्ययन आदि करना चाहिए, युवा अवस्था आने पर विषयों से वैराग के लिए गृहस्थाश्रम को अपना ले, जब विषय रस से मन वैराग हो जाए, सबको वैराग होता है, मैंने बहुतों से पूछा युवकों से, तो वैराग होने के बाद फिर वानप्रस्थ योगाभ्यास, और शरीर कैसे छोड़े तो योगे न अंते तनु त्यजताम, योग मतलब कि जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन है, चिंतन है, इस प्रकार से शरीर को त्याग करे। क्योंकि कच्चे घड़ा पर जो लीख दिया जाता है वही पकाने पर अमीट होता है, पकने के बाद वो फूट जाएगा। तो नारायण यह जो चारवाक दर्शन है इसकी भी दर्शन पदवी तभी पड़ती है जब इसमें कुछ रहस्य आप शरीर को स्वस्थ रखे, निरोग रखे। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो जैन दर्शन आता है, उसका प्रधान है विचारिष्यादवाद, जिसको कहते सप्त भृंगी नय कहते हैं। बड़ा विस्तार विवेचन है इसमें भी, आत्मा अनात्मा का, जगत का, हर बात में कहते शायद ऐसी बात हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा हो सकता हम कह नहीं सकते, कह भी सकते, हो भी सकता, नहीं हो सकता। सप्त भृंगी नय पर आधारित जो स्यादवाद है वह जैन दर्शन का देन है, आपको विचार करने की शैली ये प्रदान करता है कि आप ऐसे ही नहीं मान लेना बल्कि हर चीज को विचार के ऊपर आरूढ़ करके समझना। ऐसे बौद्ध आदि दर्शन आते हैं तो छह दर्शन के बाद तब जा करके अपना न्याय वैशेषिक सांख्य योग उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा अभी आपका वेदांत दर्शन आता है। तो शेष जो बात है ना आपकी बारह दर्शन की, कल सीधे हम लोग द्वादश दर्शन पर ही संक्षिप्त से अवलोकन करेंगे, इसके बाद तब वेदांत सब पर विचार करेंगे। वेदांत है क्या, वेदांत हम किसे कहते हैं, वेदांत की विषय महिमा बतलाई गई है कि आ सुप्ति आमृते नयेत कालम वेदांत चिंतया, जागने से सोने तक, जीवन से मौत तक वेदांत का चिंतन करे। वेदांत मतलब अपने आपा का, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसका बार बार अहर्निश चिंतन करना चाहिए। इसकी महिमा अनंत है। शतपथ ब्राह्मण में आया है एक मंत्र कि तद्यत यावत पृथ्वी अर्थम तदत पुण्यम भवति तावत स्वाध्याय न भवति। इस पृथ्वी को दान देने से जितना पुण्य होता है उससे तिगुना केवल वेदांत के स्वाध्याय श्रवण मात्र का फल है। मंदसीकार ने ऋषि भी आगे की बात कही कि बुद्धि पूर्वम कृतम पापम कृष्णम दहति वनिवत, जान बूझकर किया गया अपराध भी जो वेदांत का श्रवण करते हैं वैसे नष्ट हो जाता जैसे आग ईंधन के पहाड़ को राख कर देती है। तात्पर्य है कि आपने समझ लिया कि मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं, अधिष्ठान हूं, ये तो सब शरीर पर कल्पित है, तो आपने उससे अपना किनारा कर लिया। अब ना आपको पाप से संबंध, पुण्य से। जिस प्रकार कोई फैक्ट्री का मालिक हो, फैक्ट्री बहुत राग द्वेष, हजारों आदमी बेचारा विक्षित परेशान रहता व्यवस्था में, जिस दिन दूसरे को वसीयत लिख दिया उसके बाद कोई टेंशन नहीं, चाहे फैक्ट्री लॉस में जाए चाहे वह विकास करे। ऐसे आप जो अज्ञानावस्था में अपने को 3.5 हाथ वाला देव अभिमान कर रहे हैं मैं हूं, वह अभिमान जैसे ही विशृंखलित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है, और आप जब भूमा अभिमान में आरूढ़ हो जाते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पी सुखमस्ति, मैं ब्रह्म चेतन आत्माओं सही आदि नहीं, तो संसारक के विच्छेद होने के कारण आपको संसार का सारा अपराध आपके समान एक क्षण में जलकर राख हो जाता है। तो श्रवण की बड़ी महिमा है, शेष कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, हरि ओम, शांति शांति शांति।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम्. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम्. नारायण.